Om Namah Sitebhya. Om Namah Sitebhya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajrayanam. Namo Loe Savasahunam. Moksha Margasya Netaram. Bhittaram Karma Bhuvrutam. Gyatāram viśvatattvānām vande tadgunalabdhaye. Aushamik bhav ki charcha karte huye. Aushamik samyakta ki baat hum dekh rahe the. Aur aushamik bhav ki mahima bhi hum yaha dekh rahe the. Dekho, jab aushamik bhav ki charcha aati hai, karma ka upsham kaise hota hai, aadi baate aati hai. तो हम इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि क्या होता होगा, उपशम कैसे होता होगा. पंचलब्धि का जब हमने प्रकरण देखा था गत वर्ष, तब इसकी चर्चा तो की थी, परंतु फिर दोबारा उसकी कुछ बात हम देखेंगे कि कर्मों का कैसे उपशम होता है, क्या होता है, इसकी हम थोड़ी चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे. क्योंकि गुणस्थान के प्रकरण में भी अभी जो दूसरे गुणस्थान की बात आई थी साधन की, उसमें भी एक कंडीशन थी कि औपशमिक सम्यक्त्व का काल जिस समय चल रहा है उस काल में ये कुछ बातें बनती है और दूसरा गुणस्थान होता है. तो इसके लिए हमें औपशमिक सम्यक्त्व के काल में क्या क्या होता है या औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है उसके पूर्व कैसी अवस्था होती है कर्मों में, उसकी बात हमें यहां देखनी है. हम यहां देखते हैं कि जो कोई मिथ्या दृष्टि जीव है वो जब जब कर्मों का उपशम करके सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है. क्या कहा? कर्मों का उपशम करके सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है. मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो वहां तो कर्मों का उपशम करके भी प्राप्त कर सकता है और कर्मों का क्षयोपशम करके भी प्राप्त कर सकता है. जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, जिसकी सत्ता में एक मिथ्यात्व प्रकृति है, वो तो नियम से कर्मों का उपशम करके ही सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है. परंतु जिसने एक बार सम्यक्त्व प्राप्त किया है उसके मिथ्यात्व कर्म में से तीन कर्म हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति. तो ये जो तीन कर्म हो जाते हैं, ऐसा जो जीव है वो डायरेक्ट पहले गुणस्थान में से क्षोभशम सम्यक्त करके चौथे या ऊपर के गुणस्थानों में, चौथे पांचवें सातवें यथा योग्य जा सकता है. तो हमने दो प्रकार के जीव देखे हैं, मिथ्यात्व में से सम्यक्त प्राप्त करने वाले या तो कर्मों का उपशम करके जाएंगे सम्यक्त प्राप्त करेंगे या कर्मों का क्षोभशम करेंगे. जब जब कर्मों का उपशम करके सम्यक्त्व प्राप्त होता है तब तब उसको क्या कहते हैं? प्रथमोपशम सम्यक्त्व. पहली बार किया इसलिए प्रथमोपशम, दूसरी बार किया इसलिए द्वितीयोपशम, ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्या कहा? प्रथम, क्योंकि नाम से हम ऐसा समझते हैं ना कि पहली बार हुआ इसलिए प्रथमोपशम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. देखो, एक नियम ख्याल में रखना है, जब पहली बार सम्यक्त होगा किसी जीव को तो उसके मिथ्यात्व में से तीन प्रकार, तीन प्रकृतियां तैयार होती है. अब वो जीव दोबारा मिथ्यात्व में चला जाएगा, सम्यक्त में से दोबारा मिथ्यात्व में आया तो उसके ये जो तीन टुकड़े बने हैं, हम टुकड़े कहते हैं उसको, ये तीन प्रकृतियां जो बनी है. देखो, अनादि से तो एक मिथ्यात्व कर्म का ही बंध होता है. सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये बंधने वाली प्रकृतियां नहीं है, परंतु मिथ्यात्व प्रकृति में से तैयार होने वाली अन्य दो प्रकृतियां हैं. ये कब तैयार होती है? जब औपशमिक सम्यक्त्व होता है उस समय ये तीन प्रकृतियां बनती हैं. अब ये जो तीन प्रकृतियां बनी है वो तो बनी रहती है, जीव दोबारा मिथ्यात्व में आता है तो भी ये तीन टुकड़े अंदर सत्ता में पड़े रहते हैं। मिथ्यात्व आने के बाद मिथ्यात्व में आने के बाद दोबारा मिथ्यात्व का बंध तो चालू रहता है। तो मिथ्यात्व फिर वो अंत कोड़ाकुड़ी हुआ था ना, फिर वो अनेक कोड़ाकुड़ी सागरों का होता है। और जो अन्य दो प्रकृतियां हैं वो सत्ता में पड़ी रहती है असंख्यात वर्षों तक। अब दोबारा उस जीव को सम्यक्त होगा तो नियम से क्षयोपशम सम्यक्त ही होगा, बहुत काल तक क्षयोपशम सम्यक्त ही होगा, क्योंकि वो सत्ता में वो तो तीनों पड़ी है। जब वो दूसरे दो प्रकृतियां है उसकी सत्ता बहुत अल्प रहती है, एक सागर के करीब इतनी छोटी रह जाती है, तो जाके दोबारा उसको फिर से उपशम सम्यक्त हो सकता है। तो इसलिए वो सादी या अनादि को उपशम सम्यक्त होता है ऐसा कहते हैं। फिर भी दूसरी बार उसको उपशम सम्यक्त होगा तो भी उसका नाम क्या है, प्रथम उपशम सम्यक्त। एक बार उपशम सम्यक्त होने के बाद असंख्यात वर्षों तक मिथ्यात्व में वो जीव आएगा तो वो उसको होगा सम्यक्त, तो कौन सा सम्यक्त होगा, क्षयोपशम सम्यक्त होगा। फिर दोबारा वो बहुत समय बीत चुका, जैसे हम देवों की आयु देखते ना, सागरों की होती है या कहीं तो पल्लों की होती है, तो ये इतने असंख्यात वर्ष बीत जाने पर एक बार उपशम होके छूटा तो दोबारा जब उसको सम्यक्त होना है तो फिर वो दोबारा भी उपशम सम्यक्त होता है। इतने बीच में वर्ष जाएंगे तो उसका भी नाम है प्रथम उपशम सम्यक्त। ऐसे कोई जीव एक बार उपशम किया फिर गिर गया, असंख्यात वर्ष बीत गए, फिर उपशम किया फिर गिर गया, फिर असंख्यात वर्ष हो गए, फिर उपशम सम्यक्त किया फिर गिर गया, फिर असंख्यात वर्ष बीत गए, ऐसे भी सम्यक्त्व और मिथ्यात्व कितने बार हो सकता है, वो भी असंख्यात बार हो सकता है। ये केवली भगवान ने देखा है ना कितना क्या होता है। तो ये देखने के पहले हम वो उपशम सम्यक्त होता है उस काल में क्या क्या बातें बनती है उसकी बातें हम थोड़ी देखते हैं। अनादि से ही उसके पास, ये हमने यहाँ केवल दर्शन मोहनीय कर्म दिखाया है। देखो एक ये आड़ी लाइन क्या दिखाई, जीव जब कर्म का बंध करता है तो जो प्रत्येक कर्म प्रकृति है वो ज्ञानावरण हो दर्शनावरण है मोहनीय, जो कोई आठों ही कर्म है, वो कर्मों को इस तरह से दिखाया जाता है। इसको एक एक लाइन है, वो एक एक समय में खिरने वाले परमाणु है, इनकी सबकी स्थिति है वो समान है। नीचे पहला समय दिखाया जाता है और ऊपर ऊपर भविष्य के सारे निषेक पड़े, इसको निषेक कहते हैं। निषेक का अर्थ होता है परमाणुओं का समूह जो एक साथ खिरेगा, उसकी स्थिति समान है, उदय में वो एक समय में आएगा। ये जो सारे यहाँ बताए हैं वो सत्ता में जो निषेक पड़े हैं उसकी बात है। हर कर्म में ऐसे निषेक हम बताएंगे। देखो यहाँ कर्मों की कोई ऐसी कतार में खड़े नहीं है लाइन लगाकर कि अभी मैं खिरना है, तो ये नीचे का निषेक पैर में है और ऊपर का माथे में, ऐसा नहीं समझना। ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ये नीचे जो परमाणु है ये एक समय में खिरेंगे, अभी वर्तमान समय में, भले वो परमाणु कहीं पर हो, जीव के जो असंख्यात प्रदेश है कहीं पर भी ये परमाणु है, जो जो परमाणु एक साथ खिरेंगे उनको यहां दिखाया है। ये तो समझने के लिए, हमें समझने के लिए। वर्तमान समय हमेशा नीचे दिखाया जाता है, ये दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, इस तरह से भविष्य के सारे जो निषेक है वो यह सत्ता में पड़े हुए हैं। यहां तो दिखाने के लिए तो 10-12 लाइन हमने यहां लिखी है, परंतु ये तो अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों के यहां निषेक पड़े हैं। जब हम मिथ्यात्व की बात करते हैं तो मिथ्यात्व का कर्म बंधा हुआ अभी सत्ता में जो पड़ा है, अब अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान वाला जीव है तो उसके सत्ता में ये वर्तमान समय से लेकर जितने उसने बांधे हुए, मान लेते किसी ने 70 कोड़ाकोड़ी का भी बंध किया है तो उसके सत्ता में इतने एक एक समय करके ये सारे निषेक यहां मौजूद है। ये कब खत्म हो गए, उदय में आते रहेंगे, और उदय में आता है तो और नया नया बंध भी चलता रहेगा। ये नीचे नीचे के खिरते रहेंगे तो नया बंध होगा तो वो भी सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर। तो इस तरह से कर्मों का उदय अनादि से ही चला आ रहा है। एक एक निषेक का उदय होता है, खिरते हैं, परंतु नया नया बंद होता रहता है। तो जीव की सत्ता में ये मिथ्यात्व के जो दर्शन मोहिनी कर्म है, उसके निषेक, उसका जो उदय है, वो हर समय चलता आया है। कब से? अनादिकाल से। यहां केवल हम दर्शन मोह की बात कर रहे हैं, ये सभी कर्मों का उदय उसका चल रहा है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यान संयोजन का भी उदय चल रहा है, ज्ञानावरण का भी चल रहा है, दर्शनावरण का भी चल रहा है, आयु का भी चल रहा है। हमें यहां सम्यक तो होते समय क्या होता है उसको देखना है, इसलिए यहां हम अब ये दर्शन मोहिनी में क्या बातें बनेगी उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखो, यहां जीव पुण्य करे या पाप करे, या दर्शन मोहिनी के जो उदय में कुछ परिवर्तन नहीं होता। जैसे उसने पुराने कर्म बांधे हैं, उसके पुण्य का उदय है, कभी पाप का उदय है, और ये नया भी कभी पुण्य करता है, पाप करता है, परंतु साथ में मिथ्यात्व का उदय तो हर समय चल रहा है। ये अनादि मिथ्या दृष्टि की पोजीशन है। अभी ऐसा जीव, अभी हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, जो पंच लब्धि में हमने पूरे ही एक एक लब्धि का जो हमने उसका वर्णन सुना था, प्रत्येक लब्धि के काल में क्या क्या होता है। प्रायोग्य लब्धि में आता है तो अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के जो कर्म सत्ता में पड़े थे, उसकी स्थिति घटकर अंत कोड़ा कोड़ी होती है। उसका प्रोसेस क्या है उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, उसकी स्थिति घट जाती है। और ये इतने निषेक, अंत कोड़ा कोड़ी सागर के निषेक यहां बाकी रहते। जीव क्या करता है, हमें सबको है ना पुरुषार्थ करना है ना सबको, तो जीव क्या पुरुषार्थ करता है बोलो, कौन सा पुरुषार्थ करता है कि अभी इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं?
अपने स्वरूप में,
स्वरूप में लीन होता है, परंतु स्वरूप में कैसे लीन होना है, उसके पहले क्या होता है? हाँ, तत्व विचार। जीव तो तत्व विचार में तद्रूप होकर लीन होता है। ये जो सात तत्व है, उसका जो स्वरूप है, उसके चिंतन में, जैसे प्रत्येक कोई भी एक सब्जेक्ट लेते तो उस पर उसके विचार चलते हैं, वो निर्णय करने लगता है, तो ये कर्मों में अपने आप कुछ चेंजेस होते हैं। दर्शन मोहिनी की बात पहले उठा लेते हैं। दर्शन मोहिनी कर्म हर समय ये उदय रूप हो रहा था, ये उदय क्या बताता था कि यहां जीव में मिथ्या तो हो रहा है, वो हमें मिथ्या तो नहीं कराता था, फिर भी जीव जिस समय यहां मिथ्यात्व भाव रूप परिणमित हो रहा है, तो यहां सामने कर्मों का उदय उदय हर समय चल रहा है। अब जब जीव तत्व विचार करने लगता है तो ये परमाणु तो खिर रहे हैं, परंतु उसमें जो अनुभाग अत्यंत तीव्र अनुभाग था, उसका अपने आप अनुभाग मंद होने लगता है। बांधा कैसे भी हो, परंतु अभी सत्ता में पड़ा हुआ जो मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है, उसका अनुभाग फल लेने की शक्ति यानी तीव्रता कम होती चली जाती है। भले परमाणु तो उतनी संख्या में है, क्योंकि परमाणु कहां चले जाएंगे, जिसके जिसकी स्थिति पूरी है हुई है, वे परमाणु तो उदय में आने से ही रहे, उनका उदय तो चलता रहेगा, परंतु अभी उनका अनुभाग जो है, उनकी जो तीव्रता है, वो अपने आप कम होती है। नॉट ओनली मिथ्यात्व की, जितने जितने अशुभ कर्म है, आपको कोई मालूम है अशुभ कर्म? आ जाए भाई, पाप रूप कर्म कोई मालूम है आपको? पाप कर्म के कुछ हम अढ़ार पापों की बात नहीं कर रहे, पाप कर्मों की बात कर रहे। कर्म जो है, कर्म दो प्रकार के हैं, घाती और अघाती कर्म। तो घाती कर्म में कितने पुण्य रूप है और कितने पाप रूप है? सभी पाप रूप है। और अघाती कर्म में दो डिविजन है, कोई पुण्य रूप है, कोई पाप रूप है। जितने कोई पाप कर्म है, घाती हो या अघाती, उन सभी का अनुभाग अत्यंत कम हो जाता है। क्या होता है? ये उदय में आने वाले कर्मों का अनुभाग अत्यंत कम होता है। देखो, हमें जो फल मिलता है, जो निमित्त बनता है, कितने कर्म उदय में आते हैं, कितने नंबर ऑफ परमाणु, उससे कुछ लेना देना नहीं है। कितने इंटेंसिटी में आते हैं, उस पर उसका फल निर्भर है। जैसे यहां मिथ्यात्व कर्म उदय में आ रहे हैं, परंतु अभी कैसे हो गए, ये जो सभी पाप कर्म है ना, उनका अनुभाग प्रति समय अनंत गुणाहीन, उसका अर्थ होता है अनंत वा भाग होकर उदय में आता है। जितना अनंतवा भाग हुआ है और उसके आगे के समय में उससे भी अनंतवा भाग होकर उदय में आएंगे, उसके आगे के समय में उसका भी अनंतवा भाग, यानी प्रति समय ये सभी पाप कर्मों का उदय जो हो रहा है अनंतवा भाग होकर उदय में आएगा। तो मिथ्यात्व भी बहुत ढीला ढीला हो रहा है, अत्यंत मंद मंद हो रहा है। ऐसे तत्व विचार के काल में क्या होता है, तो आपने सुना होगा प्रायोग्य लब्धि के बाद जो जीव अपने आत्म सन्मुख पुरुषार्थ करता है, यानी उसके अभी शुद्धात्मा को उसने अपने ध्यान में लिया है, तो यहां जो ऊपर के जो मिथ्यात्व के जो परमाणु है, निषेक है, उसमें क्या होता है, कुछ परमाणु नीचे आते हैं और कुछ परमाणु ऊपर चले जाते हैं। करण लब्धि के जो परिणाम है उसमें अधकरण होता है, अपूर्वकरण होता है और अनिवृत्तिकरण होता है। जब जीव अनिवृत्तिकरण में है तब अनिवृत्तिकरण के कुछ निषेक छोड़कर उसके जो यहां के जो निषेक है उसमें से एक समय में कोई परमाणु नीचे कुछ ऊपर चले गए, दूसरे समय में और नीचे ऊपर चले गए, तीसरे समय में भी नीचे और ऊपर चले गए, इस तरह से एक छोटे से अंतर्मुहूर्त में यहां के सारे निषेक है उसका अभाव हो जाता है, पूरे के पूरे निषेक नष्ट होकर उसके परमाणु नीचे और ऊपर एडजस्ट हो जाते हैं। अभी भी अनिवृत्तिकरण चल रहा है और वहां मिथ्यात्व का बंध भी है और मिथ्यात्व का उदय भी चल रहा है, अंत समय तक चलेगा, परंतु वह अत्यंत मंद मिथ्यात्व चल रहा है। इसको कहते हैं अंतर कर दिया, गैप कर दिया। मिथ्यात्व के जो निषेक लगातार प्रत्येक समय में उदय आने योग्य थे उसमें अनिवृत्तिकरण काल के पश्चात जो उदय आने योग्य निषेक थे उन निषेकों का अभाव किया जाता है, उसके परमाणु कुछ नीचे के निषेकों में आते हैं, कुछ ऊपर के निषेकों में चले जाते हैं, और यहां ये अंतर किया जाता है। इसको कहते हैं अंतरकरण प्रोसेस, जो है ना अंतर करने का प्रोसेस। ये अंतर के नीचे कुछ निषेक है और ऊपर अंत कोड़ाकोड़ी के निषेक पड़े हैं। अब प्रति समय क्या होगा, नीचे का एक एक निषेक खिर जाएगा। ये नीचे का निषेक खिरते खिरते जीव जब इस पोजीशन पर आता है तो यहां सामने कोई उदय रूप निषेक नहीं है मिथ्यात्व के, और जीव तत्व विचार में तद्रूप हुआ है तो इस पोजीशन में आता है, एक एक समय करके ये सारे निषेक खिर जाएंगे, और जब जीव यहां आता है तो उसके आने के पहले क्या होता है, अंतर करने के बाद यहां पर ये वर्तमान समय है ना नीचे का, पहले तो अंतर कर दिया, अब क्या करता है वो ऊपर के जितने सारे जो ये निषेक है उसके परमाणुओं को उपशमित करता है, उपशमित करता है ना, ऐसी कंडीशन कर देता है अपनी जगह छोड़कर वो नीचे नहीं आ सके, क्योंकि अंतर तो किया और ऊपर से समझो नीचे आ गए तो मिथ्यात्व का उदय हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी कंडीशन हो जाती है कि यहां के परमाणु उसको कहते हैं उपशम किया, इसके भी छोटा एक अंतर्मुहूर्त में एक समय में एक लॉट उपशमित हो जाएगा, फिर दूसरा लॉट, फिर तीसरा लॉट, एक छोटे अंतर्मुहूर्त में ये ऊपर के सारे ही परमाणु जैसे थे वहां वहां उसको लॉक कर दिया, वो नीचे नहीं आ सकते। और ये नीचे के परमाणुओं को क्या होगा, एक एक करके ये निषेक सब फिर जाएंगे। जब जीव इस पोजीशन पर आता है तो ऊपर के कोई नीचे नहीं आ सकते, और अभी नीचे कोई रहे नहीं है निषेक, यहां मिथ्यात्व कर्म ही नहीं है कि जो उदय रूप हो जावे, और जीव ही तत्व विचार करते करते तत्व निर्णय तक आ गया है और आत्मा का उसने आशय लिया है और उसके यहां सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है। तो इस पोजीशन पर इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब ये जो इतना अंतर का काल है ना, इस अंतर के काल तक उसका ये सम्यक दर्शन चलेगा तो उसको कहते हैं औपशमिक सम्यक दर्शन, क्योंकि कर्मों का उपशम दर्शन होने का उपशम यहां किया हुआ है और इस पोजीशन में उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है। तो ये जो ऊपर के मिथ्यात्व कर्मों का उपशम किया है उसने, वो उपशम करने जो यानी वो है वहीं पर रहे, ये कंडीशन एक अंतर्मुहूर्त तक ही चालू रह सकती है, एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा वो उपशमित नहीं रह सकते, फिर दोबारा वो नीचे आना चालू हो जाएगा उसका। और काल बीतते बीतते जीव भी यहां पर, यानी ये समय भी पास हो जाएगा और यहां पर ये सारे सत्ता में पड़े हैं, सत्ता में है परंतु उपशमित है, उदय में नहीं आते हैं, इसलिए यहां कहते हैं वो उसका अनुदय है। ये जो पोजीशन चल रही है, यहां जब सम्यक्त्व शुरू हो जाता है उसी समय ये जो उपशमित हुए जो अंदर परमाणु है उसमें मिथ्या तो था ना पहले, मिथ्यात्व में से अनुभाग कम होकर सम्यक मिथ्यात्व नाम के प्रकृति तैयार होती है। मिथ्यात्व रूप तो रहते ही रहते हैं, कुछ परमाणु सम्यक मिथ्यात्व रूप होते हैं, उसका अनुभाग और अनंत गुणाहीन होकर कुछ परमाणु सम्यक प्रकृति रूप हो जाते हैं। इसको कहते यहां पर तीन प्रकृतियां तैयार होती है, एक प्रकृति थी उसमें से एक सम्यक मिथ्यात्व की, एक सम्यक मिथ्यात्व की और एक सम्यक प्रकृति की, ऐसे तीन प्रकृतियां एक प्रकृति में से तैयार होती है। ये कार्य कब हुआ? जब उपशम सम्यक की प्राप्ति हुई और यहां जीव सम्यक दर्शन उसका चल रहा है, उसी काल में यहां के परमाणुओं में से तीन प्रकृतियां तैयार हो गई। अब पोजीशन ख्याल में आई ना? तो यहां इतने काल में अन्य किसी कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है, परंतु अनंतानुबंधी का नहीं चल रहा। देखो ये अंतर केवल किसमें पड़ा है? दर्शन मोहनीय में, मिथ्यात्व में। अनंतानुबंधी में कोई अंतर नहीं पड़ा है, परंतु अनंतानुबंधी को यही रहते हुए भी इस तरह से किया है, उसका भी नाम है उपशम, पर उसको क्या कहते हैं? अप्रशस्त उपशम। अप्रशस्त उपशम का अर्थ क्या होता है? कि उसमें अंतर तो नहीं पड़ा था, परंतु ऐसी कंडीशन है अनंतानुबंधी का उदय अपने रूप से नहीं होता है, वो अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन रूप से उदय में आता है। यहां अनंतानुबंधी के परमाणु पड़े है हो, गैप जहां गैप तो दर्शन मोहनीय में, अनंतानुबंधी का अगर हम ऐसे अलग नक्शा निकालेंगे तो उसमें अनंतानुबंधी वहां पर है मौजूद, परंतु वो उदय में नहीं आ रहे। उदय में नहीं आने उसका अर्थ क्या है? वो अपना फल अपने रूप से नहीं दे रहे, वो टर्न होकर एक एक समय के परमाणु टर्न होकर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन आदि रूप से उदय में आते हैं। यानी अभी इस पोजीशन पर क्या बात हो रही है? मिथ्यात्व का भी उदय नहीं है और अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं है, तब हम कहते हैं यहां उपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है। तो ये जो ऊपर जो उपशमित परमाणु है ये किसकी है? दर्शन मुनि के, मिथ्यात्व के। और ये गैप में जो है अनंतानुबंधी के परमाणु पड़े हैं परंतु उदय में नहीं आ रहे हैं अभी इस पोजीशन। ये ऐसी बात कब तक चलेगी? अंतर्मुहूर्त तक चलेगी। हम यहां केवल उपशम सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं, ये दूसरे गुणस्थान में क्या होता है उसकी बात अभी नहीं उठाएंगे हम। तो ये बात समझ में आई यहां क्या होता है? अब ये जो यहां अंतर्मूर्त वाला उपशम सम्यक्त्व तो है, इस काल में अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन का तो उदय है ही है। अन्य जो सभी प्रकृति है, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतराय है, वेदनी है, आयु है, नाम है, गोत्र है, सभी का उदय चल रहा है। हमें दर्शन मोहनीय में क्या हो रहा है ये बात देखनी थी, इसलिए उसको यहां हमने दिखाया है, परंतु ज्ञानावरणादि समस्त कर्मों का उदय वहां चल रहा है। अंतर हुआ है वो दर्शन मोहनीय में हुआ है और उपशम हुआ है वो दर्शन मोहनीय में। इसको कहते हैं अंतर के ऊपर के निषेकों का प्रशस्त उपशम हुआ है। अंतर के बाद जो ऊपर जो उपशमित हुए है अंतर मुहूर्त तक नीचे नहीं आ सकते हैं, उसको कहा है प्रशस्त उपशम है। अनंतानुबंधी यहां पर पड़े हुए हैं परंतु वो अपने रूप से उदय में नहीं आते हैं, उसको कहते हैं अप्रशस्त उपशम है। वहीं पर रहेंगे, उदय में आते समय अप्रत्याख्यानावरणादि रूप से उदय में आएंगे। ये उपशम सम्यक्त्व की पोजीशन है। इतनी बात ख्याल में आई? हाँ, अभी क्वेश्चन पूछिए। हाँ, हाँ आपका प्रश्न है इस पोजीशन में जीव क्या करता होगा, उसका गाढ़ पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ से ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ के बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति ऐसे ही हो जावे और कर्म में ये अपने आप कुछ बातें बनी। कर्म तो अपने स्वयं के कारण से इस रूप परिणमता है, फिर भी जीव अपने में लीन होता है। वो लीन होना ये तो बाद में अपने आप होती है। उसने क्या पुरुषार्थ किया? तत्व विचार में तद्रूप होकर लीन हो गया। ये तत्व विचार होते रहे, फिर विकल्प छूटकर निर्विकल्प कैसे होना? ये होने बिने की कुछ बात नहीं है, क्या करने चाहिए की वाली बात होती नहीं है। विचार भी स्वयं छूट जाते हैं और जीव निर्विकल्प अवस्था प्राप्त करता है। ये ज्ञान रहित नहीं होता है, निर्विकल्प होता है ना, ज्ञान रहित नहीं। अभी उसकी बात आएगी हमारे आगे के प्रकरण में, तभी हम उसकी चर्चा करेंगे निर्विकल्प क्या होता है। आपका क्या प्रश्न है शिल्पा जी? आपका प्रश्न है ये जो अंतर्मूर्त है वो सब जीवों का जो अंतर्मूर्त का काल है वो समान है कि छोटा बड़ा होता है? छोटा बड़ा यथा योग्य हो सकता है। देखो हमने देखा था ना, कोई जीव डायरेक्ट पहले गुणस्थान से चौथे में जाता है, कोई डायरेक्ट पहले से पांचवे में जाता है और कोई डायरेक्ट सातवें में जाता है। तो चौथे को छूते हुए, पांचवे को छूते हुए कोई सातवें में नहीं जाता, क्योंकि उसके जो जो कोई चेंजेस होते हैं यहाँ पर। इस जीव के तो अकेला अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम हुआ था, अब जो पांचवे में जाएगा उसके दो कषाय चौकड़ी का होगा, जो सातवें में जाएगा उसका तीन कषाय चौकड़ी का होगा, और उसमें भी जो कुछ उसमें बहुत विस्तार से जो चर्चा है ना, स्थिति कांड घात आदि होते हैं, स्थिति कितनी घटती है उसका भी प्रपोर्शन अलग अलग होता है। तो पहले से सातवें में जाने वाले के सारे ही प्रोसेसों में उसका जो प्रपोर्शन है वो अलग अलग होता है, क्योंकि वहां जीवों की विशुद्धि बहुत ज्यादा है। हाँ, आपका प्रश्न? आपका ऐसा कहना है क्षोभषम में यही बात लागू होती है। कहाँ पर? क्षोभषम में क्या होता है? आपका ऐसा प्रश्न है कि क्षोभषम में भी हमने सदवस्था रूप उपशम कहा है, जो अप्रशस्त उपशम। सदवस्था रूप उपशम किसका होता है वहाँ पर?
सर्वघाती।
कौन से सर्वघाती?
हाँ,
ज्ञानावरणी का संबंध नहीं, हम तो क्षोभषम सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं।
वर्तमान
नहीं नहीं, कमलेश भाई कुछ अलग बताना। कमलेश जी आप कुछ कहना चाहते? दर्शन मोनी की, परंतु दर्शन मोनी में कौन से सर्वघाती है, कौन से देशघाती है?
नित्यत्व और जो सर्वघाती है वर्तमान काल, उसका सर्वस्था रूप उपशम, सर्वस्था रूप।
देखो देखो हम उसको देखेंगे जरा, क्योंकि क्या है अभी उपशम समझ में आया तो हम क्षोभषम की बात करेंगे। इसमें अभी क्या है, यहाँ ऊपर तीन प्रकृतियां तैयार हो गई है। कौन कौन सी तीन है? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये तीन प्रकृतियां तैयार हुई है, उसमें से दो प्रकृतियां जो है मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये कहलाती है सर्वघाती प्रकृति। किसका घात करते हैं पूरा पूरा? सम्यक्त्व का पूरा, अपने प्रतिपक्ष का पूरा घात करते। उनका प्रतिपक्ष कौन है? मिथ्यात्व प्रकृति का प्रतिपक्ष कौन है? सम्यक्त्व। ये दर्शन मोहनीय का जो प्रतिपक्ष है वो सम्यक्त्व है, तो उसका पूरा घात करते हैं। तो सम्यक्त्व का पूरा घात, मिथ्यात्व का उदय हो जावे तो जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में आता है। सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जावे तो भी सम्यक्त्व का घात होता है और जीव तीसरे गुणस्थान में आता है। सम्यक प्रकृति कैसी प्रकृति है?
देशघाती।
उसका उदय हो तो सम्यक्त्व का घात तो नहीं होता, जीव का जो गुणस्थान है वो चलता रहता है। तो इसके लिए उपशम सम्यक्त्व काल के बाद, देखो जब ये उपशम चल रहा है तो तीनों ही प्रकृति में से किसी का भी उदय नहीं है, इसलिए उसको कहेंगे हम उपशम सम्यक्त्व या उपशमिक सम्यक्त्व। ये बात ख्याल में आती है? तीनों प्रकृति ऊपर उपशमित हुई पड़ी है, इतना काल पूरे हुए बिना वो नीचे नहीं आ सकती। ये काल पूरे होने पर तीन में से कोई ऑप्शनल, जिसका जीव का जैसा भाव है उसका उदय हो जाएगा। मान लेते उपशम सम्यक तो पूरा हो गया। अभी सत्ता में तीन प्रकृति है, आप कौन से प्रकृति का उदय चाहते हैं? हमारी चाहने से कुछ नहीं होता। जीव जैसा भाव करता है उसका जो तत्व श्रद्धान चालू रहे तो वहां सम्यक प्रकृति का उदय हो जाता है और उस जीव को सूक्ष्म सम्यक तो प्राप्त होता है। अब ये तीन प्रकृतियों का हम दिखाएंगे यहाँ पर तो ये ख्याल में आएगा। हाँ, आपका प्रश्न क्या है?
सम्यकत्व में आत्मा में स्वसंवेदन होता है क्या?
हाँ, सम्यकत्व है तो पहले ही समय से, ये जो पहला समय है ना यहाँ पर प्राप्त होती है, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति हो जाती है और स्वसंवेदन की प्राप्ति होती है, उसी से पता चलता है कि यहाँ सम्यक दर्शन हो गया है।
और उस समय जब मिथ्यात्व का टूटता है उसका भी कोई स्पंदन होता है
क्या? नहीं, क्योंकि ये कर्म टूटते, टूटना कहना ये तो उपचार है, वहाँ कोई उसके टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं।
ग्रंथी बड़ी थी मिथ्यात्व।
हाँ, ग्रंथि का भेद होना, देखो ये टुकड़ा होना या उसके टुकड़े होने कहना या ग्रंथि का भेद होना कहना ये तो उपचार है ना। मिथ्यात्व था, वो भावों में था, वो भाव अभी नहीं रहा तो हम कहते मिथ्यात्व ग्रंथि का भेद हुआ, उसका टुकड़ा हुआ या मिथ्यात्व प्रकृति के टुकड़े हुए, वहां कोई अंदर स्पंदन नहीं होता है कि कुछ धक्का लगता होगा या कोई उसके टुकड़े होने का फीलिंग होता होगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, स्व संवेदन के पहले जीव तो तत्व विचार में तद्रूप है, उसको अन्य कोई विचार भी नहीं है और ना ही कोई अन्य फीलिंग, अगर उसका उसमें लक्ष्य चला जाए तो ये तो कोई घोटाला हो जाएगा, है ना? ना उसको कोई इंद्रियों के प्रति उसका वहाँ ज्ञान चल रहा है।
तो एक क्षेत्र वाला संबंध है गल और उसमें, क्योंकि अभी तक तो वो बिल्कुल पानी और दूध के जैसे है, अब बिफोर गेटिंग उपशम समय उसमें कोई ऐसा झटका लगेगा?
नहीं नहीं नहीं, कोई झटका नहीं लगता है। और अभी भी देखो ये भिन्न ही है, एक क्षेत्रावगाही होते हुए भी कर्मों में कुछ भी हो जावे तो भी जीव में कोई उसका फीलिंग नहीं है, समझे ना? अभी भी वो एक क्षेत्रावगाह रूप से ही है, उपशमित भी हुए हैं तभी एक क्षेत्रावगाह रूप ही है, अन्य आठों कर्मों का उदय है वो भी सत्ता में पड़े है, वो एक क्षेत्रावगाह रूप ही है, उपशम की क्या बात है? जब क्षायिक समय तो हो जाता है, पूरा सत्ता में से निकल जाता है तो भी कोई झटका बिटका कुछ नहीं लगता है। जीव तो अपने अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करता है, उसके अन्य कुछ नहीं होता है, तो झटका लगना ये तो स्पर्शन इंद्रिय द्वारा पता चलेगा ना, वहां इंद्रिय ज्ञान नहीं चल रहा है, और इंद्रिय ज्ञान चलता भी होगा तो भी झटका नहीं लगता, क्योंकि
जब आप बिल्कुल बाहर का कोई विचार नहीं करें,
हाँ,
उस समय जैसे वो दूध और पानी में से बिल्कुल पानी अलग हो जाता है और एक 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 ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है,
ऐसा कुछ वहाँ नहीं होता।
स्पंदन हाँ, से पहले मिल सकती
है? बिल्कुल नहीं मिलती ऐसा कोई, क्योंकि हम कोई कर्मों का स्पंदन, अभी इतने कर्म है, अभी अनंत कर्म है, उसका कुछ बोझा लग रहा है क्योंकि हमसे जुड़े हुए ऐसा कोई फीलिंग है तो वो बाद फिर बाद में वो झटके से दूर हो, कुछ झटका नहीं होता है, कुछ अपने से भिन्न नहीं होते। अरिहंत अवस्था में भी जो कर्म है वो एक क्षेत्रावगाह रूप से पड़े हुए हैं, उसमें कोई ऐसा भिन्न फीलिंग नहीं होता है।
हाँ, आनंद का अनुभव अंतर के लास्ट समय तक रहता है।
हाँ, ये जो है अनुभव यहाँ तक रहता है क्या? अभी क्या है, कर्णान योग की अपेक्षा इसमें भी बहुत चलते है, यहाँ विशिष्ट इसमें भी अनेक प्रोसेसेस होते रहते हैं, तो ऐसा तो शास्त्र में भी कथन आता है कि इसमें तो शुद्धोपयोग में से शुभोपयोग में भी आएगा यहाँ पर, और फिर भी उसका उपशम समय तो चलता रहेगा। अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि इतने काल में यहाँ सातवां गुणस्थान आया ना पहले में, पहले तो सातवें में से छठे में और छठे में से सातवें में हजारों बार होता है, 1000 नहीं हजारों बार होता है, यानी शुद्धोपयोग शुभोपयोग है ना, तो शुभोपयोग में बाहर देखने लगे और शुद्धोपयोग में अंदर हो जाए, ऐसी बात नहीं होती। वो भले वो जो कुछ विचारों में है या ध्यान में, फिर भी उसके वो बीच बीच में वो विचारों में भी आता रहेगा या फिर ध्यान उपयोग में भी चला जाएगा, ऐसी बातें होती है।
मेरा एक प्रश्न लेवल पे डिफरेंट है, जब ये परिस्थिति चल रही है, जब सम्यक दर्शन की शुरुआत हो रही है, तब तीन गुण है वो दर्शन गुण, चरित्र गुण और चरित्र गुण, उसकी पर्याय वहाँ व्यक्त हो जाती है, तो वो भी एक एक्सपीरियंस की बात है ना।
देखो देखो, ये जो यहाँ एक्सपीरियंस हो रहा है तो केवल तीन ही गुण सम्यक नहीं हुए, अनंत गुण।
हाँ, लेकिन मुख्यतः
हाँ, परंतु अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड जो आत्मा है, वो अनंत गुणों का एक रूप जो रस उसको अनुभव में आया है, उसी को अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं। वो नॉट ओनली एक गुण का है, अकेले सम्यक श्रद्धा गुण का फीलिंग नहीं है वहाँ, ना ही अकेले ज्ञान या चारित्र का वेद, पूरा अनंत गुणों का अखंड एक रूप जो कोई आत्मिक रस है, आत्मिक आनंद है, उस आनंद की वहाँ अनुभूति होती है ना। और उसमें जब कोई ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं, अरे ये ज्ञान गुण दिख रहा है, ये दर्शन गुण दिख रहा है, ऐसी कोई नहीं होती वहाँ।
ऐसा पढ़ा है कि वो व्यक्त हो जाती है, मीन्स जैसे अभी
व्यक्त होना है ना, उसकी अनुभूति होना,
रूपी तरीके व्यक्त हो
जाता है, ऐसा नहीं रूप भी कुछ नहीं।
ज्ञान जैसे कैसे, ज्ञान की पर्याय में ज्ञान
देखो देखो
प्रकट होता है।
देखो जैसे आपको भूख लगी है, वो प्रकट हो रही कि नहीं हो रही, भूख आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पेट भरने पर फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वैसे वहाँ आनंद की अनुभूति हो जाती है, ज्ञान उसको जान लेता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, आपका कोई प्रश्न था किसी बहन का, मैंने बीच, हाँ ज्योत्सना बेन। हाँ, आपका प्रश्न है सम्यक तो लंबे टाइम तक टिकता है, तो अंतरकरण का समय बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। उपशम सम्यक्त्व का काल तो इतना ही है, इसके बाद सम्यक्त्व चालू रहेगा तो वो अपने आप वेदक सम्यक्त्व यानी क्षोपशम सम्यक्त्व रूप से टर्न हो जाता है। उसके लिए उसको ये नहीं, वो भले वो सागरों तक चलता रहे, उसका सम्यक्त्व टूटना ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसके बाद क्या होता है उसको अभी हम देखेंगे, उपशम सम्यक्त्व में से बाद में वेदक सम्यक्त्व कैसे होता है उसको हम देखेंगे। उपशम सम्यक्त्व हुआ, उसका काल पूरा हुआ, इसलिए अभी जीव मिथ्यात्व में आएगा ऐसी कोई जरूरत नहीं है।
और दूसरा प्रश्न ये कि सम्यक दर्शन यहाँ हुआ है, ऊपर जो अनंत आनंद बताया है, तीन कषाय तो वहाँ है।
हाँ,
तो तीन कषाय मंद हो जाते हैं तो वो फौरन ही कट जाते हैं या फिर
हाँ देखो अभी यहाँ पर अनंतानुबंधी तो अन्य रूप से उदय में आ रहा है, अन्य जो तीन कषाय है उनका उदय चल रहा है। जीव शुद्धोपयोग में हो या शुभ भाव में या अशुभ भाव में भी हो, उसको अभी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, परंतु अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन तीन कषाय चौकड़ी का उदय है, और उसके योग्य शुभ या अशुभ भाव भी वहां चलेंगे। बात की भी बात है, ये शुद्धोपयोग में से बाहर आने के बाद भी उसके वहां शुभ उपयोग भी चलेंगे, और उसके बाद वो वेदक सम्य दृष्टि होगा चौथे गुणस्थान वाला, तो 24 घंटे तो आत्मा में नहीं रहता है, तो उसके तो शुभ भी हो गए अशुभ भी हो गए, खाना पीना खाएगा, व्यापार करेगा, बच्चों को डांटेगा भी, ऐसे सम्य दृष्टि हुआ तो ऐसा मुंह लटका के नहीं बैठेगा 24 घंटे। देखो ये सौधर्म इंद्र सम्य दृष्टि है कि नहीं है, तो आके जन्म कल्याणकों में तांडव नृत्य करता है, अभी तो पंच कल्याण करके आए ना, और शची इंद्राणी तो वो उसके वैभव के साथ आएगी कि नहीं आएगी, तो जो जिस जैसे पर्याय में है वैसे उसके अन्य भाव चलते रहेंगे, उसके सम्य दर्शन में कोई वहां धोखा नहीं हो रहा है या कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। हमें तो हमने कुछ ऐसे इमेजिन कर देते हैं ना, सम्य दर्शन वो तो एकदम बिल्कुल सादा सादा ऐसा, यानी हमने कुछ किसी व्यक्ति को देखा है तो हम सबको इमेजिन करते हैं ऐसे कोई हाई स्टेज पर होगा, ये अविरत सम्य दृष्टि की बात चल रही है। पांचवें गुणस्थान वाला भी सम्य दृष्टि युद्ध में भी जा सकेगा। ये जो सारे जो तीर्थंकर होते हैं आठवें गुणस्थान में तो अनुव्रत धारण करते हैं। हाँ,
युद्ध में जा सकता है, उसके बाद नहीं है। रेप करता है किसको, किसको बलात्कार करता है, इसकी बात है।
उसकी कहाँ यहाँ बात आई, या ऐसे परिणाम वाले थोड़े ही होते हैं, बिल्कुल नहीं 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 ये हमारे प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि कुछ इससे लगते हो, ये ऐसे कोई अन्याय नीति अत्याचार के और स्वच्छंदी की थोड़ी बात करते हम यहाँ। हाँ, तो ये प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। हाँ, अभी हम इसमें से सूक्ष्म सम्यक तो कैसे चालू रहता है उसकी बात करेंगे हम थोड़ा। यह हम देखते हैं ये जो तीन टुकड़े हुए हैं ना उसकी बात हम करेंगे। देखो अभी हम देखते हैं यहाँ पर। हाँ आपने पूछा था कि आत्मा इसको देखता है कि नहीं, बराबर है ना। ये तो कर्मों में बात चल रही है। और आत्मा कैसे देखेगा कर्मों को? आंखों से देखेगा क्या? स्पर्शन से फील करेगा? अभी हमको कर्म दिख रहे हैं कि आपको मुझे नहीं दिख रहे। तो सम्यक दर्शन होने के बाद दिखने लगे कि नहीं लगेंगे? ख्याल है ना। ये जो कर्मों की सारी थियोरी हम जानते हैं वो आगम के द्वारा जान रहे हैं। सम्यक दृष्टि होने पर उसको कुछ अंतर में, अरे ये मिथ्या तो यहां दब गया है, यहां अंतर पड़ा है, यहां गैप हो गई है, ये अभी होल हो गए, कुछ नहीं होता है। ये जो सारा हमें ज्ञान है वो आगम के द्वारा होता है। आपने कोई टैबलेट खाई तो डॉक्टर डिस्क्राइब करेगा, या आपने जो कौन सी आपकी पैरासिटामोल खाई है तो पेट में जाएगी, फिर उसकी ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी, लिवर में उस पर ऐसे एक्शन हो जाएगा, फिर उसका केमिकल ये सारा फॉर्मूला बदल जाएगा, फिर वो ऐसे करेगी। तो आपको खाने के बाद फील हो रहा है ना, अरे वो लिवर में गई है, अभी उसमें डिजॉल्व हो गई। नहीं होता है ना। ये तो नॉलेज है। ऐसे ही ये सारी सारी कर्म की बात है, हमें आगम के द्वारा पता चलती है। केवल ज्ञानी तो प्रत्यक्ष जानते हैं, परंतु जो अवधि ज्ञानी वाले, देखो अवधि ज्ञान में भी वेरिएशंस होते, देशावधि के भी असंख्यात प्रकार है। पावरफुल देशावधि वाले हैं, परमावधि वाले हैं, परमावधि वाले भी असंख्यात है, और सर्वावधि यानी परमाणु तक को जानने वाले जो जीव है वो तो ये सारी कर्म की बातें साक्षात जानते हैं। बिल्कुल नहीं, क्रिया होती है अवधि ज्ञान से। जब परमाणु को जानने की क्रिया होती है तो उस पर ध्यान है ना, ये क्या आत्मा के विचार चल रहे हैं, ख्याल है ना। जब आत्मा का ज्ञान है तो ये मतिशुद्ध ज्ञान चलेगा, वो भी वो बाह्य सभी पदार्थों से, वो उसके वहां से हटकर अपने आत्मा में वो केंद्रित है। ये कुछ नहीं है, ये जो जब सम्यक्त्व का काल है, शुद्धोपयोग का काल है, वहां शुद्ध आत्मा का लक्ष्य है, परम पारिणामिक भाव में वहां एकाग्रता हो गई है, उस रूप में हूं, ये उस वहां चल रही। ज्ञान में वो बातें आएगी, जिसने जाना है उसके ज्ञान में रहेगी। ज्ञान में है इसका अर्थ है वो उसका उपयोग का विषय है, ऐसा हम नहीं कह सकते। और वहां अभी रुको, कर्म की बातें हमें कुछ पता नहीं चलती है, ये आगम से ही पता चलती है। वहां डायरेक्ट अंदर क्या हो रहा है बिल्कुल पता नहीं चलता। हाँ ये तो आत्मा में उसका ध्यान है, तत्व विचार में वो लीन है और कुछ नहीं कर रहा है। अब यहां हम देखते हैं तीन, यहां इसके टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व एक कर्म प्रकृति की, उसमें से तीन प्रकृतियां बन गई है। एक है मिथ्यात्व प्रकृति, एक है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, और एक है सम्यक प्रकृति। अब पहले में पहले हमने जो पहले देखा था, पहले पेज पर वहां क्या देखा था, तीनों ही तीनों उपशमित थी, तीनों में से किसी का भी उदय नहीं आ रहा था और ना ही अनंतानुबंधी का उदय आ रहा था। अब उपशम का काल तो समाप्त हो गया, तो समाप्त होने पर क्या हो जाएगा? तो समाप्त होने पर ये जो तीन प्रकृतियां यहां तक थी, तो ऊपर से ये सम्यक प्रकृति के परमाणु नीचे आते हैं, यहां उसके निषेक तैयार होते हैं और सम्यक प्रकृति का उदय होने लगता है। अब अनंतानुबंधी उसी प्रकार से रहेगी, अप्रत्याख्याना वर्णादि रूप से उदय में आएगी, अपने रूप से उदय में नहीं आएगी। सम्यक प्रकृति का उदय हो जाएगा, अभी उपशम सम्यक तो समाप्त हुआ, सम्यक तो समाप्त नहीं हुआ है, उपशम समाप्त हुआ है, सम्यक तो उस जीव का चालू है, तो उसको वेदक सम्यक तो कहलाते हैं। यहां पर क्या है, ये जो देशघाती प्रकृति है, सम्यक प्रकृति देशघाती है, उसका उदय होते हुए भी सम्यक्त्व का घात नहीं होता, सम्यक्त्व चालू रहता है। जो चौथे में है उसका चौथा है, पांचवे में उसका पांचवा है, सातवें में से छठे सातवां जो यथा योग्य उसका रहेगा, तो ये उसका उदय होता रहेगा। और ये जो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, वो उदय के ऊपर के भाग में यानी उदयावली कहते हैं, उसके एक आवली काल ऊपर तक वो रहते हैं। तो अभी उसकी स्थिति तो पूरी हुई ना, तो बाय चांस उदय में आवे तो ये जो उदय में आते समय ये सम्यक प्रकृति रूप टर्न होकर उदय में आते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। वो सम्यक तो में से भ्रष्ट होना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, वेदक सम्यक तो अधिक से अधिक 66 सागर तक चलता रहे उसका, बिना उसमें से गिरे। मिथ्यात्व में आना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, जिसकी सत्वों में दृढ़ता होती है वो क्यों गिरने लगा, फिर भी गिर सकता है तो उसकी बात आती है। अब कोई दूसरा हम सम्यक दृष्टि जो लेते हैं, उपशम सम्यक्त्व के बाद क्या होगा उसका, ये बीच वाली प्रकृति है सम्यक मिथ्यात्व वाली, तो उसके परिणाम ऐसे होते हैं कि सम्यक्त्व तो हुआ था परंतु अभी फिर उसका डगमगा जाता है, और उसके जो कोई जैसे हम कहते हैं ना कि खोटा भी श्रद्धान और सच्चा भी श्रद्धान, ऐसा कोई उसका विपरीत परिणाम हो जाता है। और यहां सम्यक प्रकृति का उदय होता है, ये दो प्रकृति ऊपर रहती है और ये प्रकृति नीचे आती है, तो तीसरा गुणस्थान होता है। ये तो छोटे अंतर्मुहूर्त में रहेगा, उसका उसकी बात आएगी गुणस्थान के प्रकरण में। कभी कभी क्या होता है, यहां के बाद ये मिथ्यात्व का ही उदय हो जाता है, सम्यक तो प्राप्त किया इतने पुरुषार्थ से, अब क्या हुआ, फिर अतत्व श्रद्धान हो गया, मिथ्या दृष्टि बन गया, एक अंतर्मुहूर्त सम्यक तो रहकर वो उसका मिथ्यात्व का उदय हो जाए तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाता है। उपशम सम्यक तो काल के बाद ये तीन रस्ते हैं, और उपशम सम्यक तो का काल पूरा होने के पहले जो हमने अंतर देखा था, वहां वो तीनों तो उपशम ही थे ना, और अनंतानुबंधी कैसे है, अन्य रूप से उदय में आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, छह आवली पहले मिथ्यात्व का तो उदय नहीं आ सकता परंतु अनंतानुबंधी का उदय आ सकता है, तो आएगा तो क्या होगा कलाबिन, सासादन नाम का गुणस्थान होगा, क्योंकि वहां पोजीशन क्या है, अनंतानुबंधी का तो उदय हुआ है, मिथ्यात्व का अभी उदय नहीं होगा, मिथ्यात्व का उदय नियम से होने वाला है, क्योंकि अभी तो अनंतानुबंधी का उदय शुरू हुआ है तो सम्यक्त्व से तो भ्रष्ट हो चुका, अभी सम्यक्त्व में नहीं रहा, और अभी मिथ्यात्व तो उपशमित है, मिथ्यात्व तब उदय में आएगा जब उसका उपशम काल पूरा हो जाएगा। अभी अनंतानुबंधी का उदय आया है और छह अवली काल के बाद मिथ्यात्व का उदय आने वाला है, तो उसका दूसरे गुणस्थान में रहने का काल छह अवली है। कोई ऐसा जीव है, अभी 10 समय बाकी है उपशम का काल पूरा होने के पहले, और उसके अनंतानुबंधी उदय में आएगा, तो उसका दूसरे गुणस्थान का काल कितना रहेगा, 10 समय है ना। कोई एक समय पहले उदय में आवे तो उसका दूसरे गुणस्थान का काल एक समय। तो ये अंतर के काल में, उपशम सम्यक्त्व के काल में मिथ्यात्व का उदय आ ही नहीं सकता, अनंतानुबंधी का आ सकता है, वो भी छह आवली से ज्यादा काल में नहीं आ सकता, यानी उसका मिनिमम उपशम सम्यक्त्व का काल उतना तो रहेगा ही रहेगा, ख्याल में ना, उपशम सम्यक्त्व अभी सम्यक्त्व हो गया है वो। हाँ बोलो प्रश्न क्या,
उपशम सम्यक्त्व
नहीं 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 ऐसा कभी नहीं होता कि छह आवली का ही उपशम सम्यक्त्व है, उसी में अनंतानुबंधी का उदय, तो सम्यक्त्व कहाँ हुआ, उसका काल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ, उपशम सम्यक्त्व का अंतर्मुहूर्त तो है ही है, ये उसमें से छह आवली घटा दो तो भी उसका अंतर्मुहूर्त तो रहता ही रहता है, तो अंतर्मुहूर्त वाला उपशम सम्यक्त्व होने के बाद रिमेनिंग जो उसका काल है, उपशम सम्यक्त्व का ही जो रिमेनिंग काल है, वहां अनंतानुबंधी का उदय हो सकता है, वहां मिथ्यात्व का उदय नहीं आ सकता, हमने पहले पृष्ठ पर देखा था ना।
तो इसका मतलब ये है कि वो काल जगन्य अंतर मुहूर्त से ज्यादा होता है,
अंतर मुहूर्त ही होता है।
48 मिनट
हाँ देखो हाँ देखो देखो सुनो, जब अंतर मुहूर्त को समझाते समय उत्कृष्ट क्या है और जगन्य क्या है कहा था, परंतु उपशम सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल कभी 48 मिनट वाला नहीं होगा, कुछ सेकंड हो जाए या सेकंड का भी कुछ छोटा हिस्सा हो जाए, क्योंकि वो तो क्या है, एक सेकंड में तो कितने हजारों आवली होती है और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, जो जगन्य युक्त असंख्यात समय इतने होते हैं एक आवली में, वो बहुत यानी हमें लगता है इतना छोटा काल, परंतु वो 48 मिनट वाला इतना लगातार रहने का कोई बात नहीं उसमें।
नहीं
बिल्कुल नहीं, 48 मिनट तक रहे तो केवल ज्ञान होता है, ये जो कथन है वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि हमने ऐसे ही माना है जितना लंबा अंदर में रहेगा उतना केवल ज्ञान हो जाएगा। अरे कैसा होगा, क्योंकि यहाँ तो केवल ये तीन का ही उपशम हुआ है और अनंतानुबंधी यहाँ उदय रूप नहीं है, और ऐसी अवस्था में अंतर्मुहूर्त रहे, तीन कषाय चौकड़ी के उदय पूर्वक अंतर्मुहूर्त रहे 48 मिनट तक, तो केवल ज्ञान हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है, ये 48 मिनट वाली कंडीशन कहीं पर नहीं है। ये उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी में भी इतना टाइम नहीं लगता है, उसको तो इससे भी छोटा टाइम लगता है। छठे गुणस्थान का जो अंतर्मुहूर्त है, देखो छठा सातवा चलता है। अब हमने देखा था उपशम सम्यक्त्व के काल में हजारों बार छठा सातवा होता है, तो छठे का काल कितना छोटा है, और उस छठे के काल से भी छठे गुणस्थान से ऊपर चला सातवा आठवा नौवा दसवा ग्यारहवा फिर दसवा फिर नौवा फिर आठवा फिर सातवा, ये पूरा ऊपर जाके नीचे आने का काल छठे से भी छोटा है। हमें पता ही नहीं ना, ये अल्पभूत वगैरह कभी पढ़े नहीं ना हमने।
मेरा प्रश्न ये था कि जगन जो अंतर्मुहूर्त होता है काल के, अंतर्मुहूर्त में उत्कृष्ट भी हो सकता है जगन्य और इन बिटवीन हो सकता है।
देखो देखो ये जो है ना उपशम सम्यक्त्व का काल, उपशम सम्यक्त्व के काल में रेंज है, किसी का काल थोड़ा होगा और किसी का ज्यादा होगा। ये जो उत्कृष्ट बताया है वो उपशम सम्यक्त्व क्या उत्कृष्ट काल बताया है, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त नहीं बताया है। अभी हम मान लेते हैं किसी को 4 सेकंड के लिए हुआ और किसी को 8 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए हुआ, समझने के लिए, तो ये 10 सेकंड क्या कहलाएगा, उत्कृष्ट काल, और 4 सेकंड क्या कहेंगे हम उसको, जघन्य काल। ख्याल है ना, मैं वो 48 मिनट वाला कहीं, हाँ
48 मिनट की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जगन्य अंतर्मुहूर्त है वो आवली प्लस एक समय है, तो उतना भी हो सकता है छोटा काल
नहीं, आवली, हाँ, उससे आवली प्लस एक समय वाला काल नहीं होगा, इतना छोटा अंतर्मुहूर्त नहीं होगा। हाँ, यथा योग्य जो कोई अंतर्मुहूर्त है जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है उतना यथा योग्य अंतर्मुहूर्त होगा। हाँ हाँ, उत्कृष्ट काल भी जो यथा योग्य जिनेन्द्र भगवान है, क्योंकि उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, एक क्षोभम ज्ञानी है हम तो हम इतना ही कहेंगे यथा योग्य है, उसमें जघन्य और उत्कृष्ट जान लेना, परंतु ये 48 मिनट नहीं लगते हैं। ये जो हम कहते हैं ना 48 मिनट में लगातार अंतर, हम भी पहले ऐसा ही समझते थे ना, क्योंकि ऐसा ही सुना हुआ था, परंतु कर्णानि योग की जो हम बातें समझते ये सारे लब्धिसार क्षपणासार वगैरह या धवला ग्रंथों में तो बार बार बहुत जगह ये बातें आती है। ये ऊपर के गुणस्थानों का काल तो छोटा छोटा है, बहुत छोटा है, नीचे के गुणस्थानों में जो गुणश्रेणी भी आदि होती है वो बड़ी बड़ी होती है, ऊपर तो असंख्यात गुणा होती है परंतु उसका काल छोटा छोटा होता जाता है। उसमें आप जितना पढ़ोगे उतनी बात अधिक क्लियर होती है, ऐसा ही है ना, सामान्य से भी विशेष जो है जितना जानेंगे उतने हमें क्लैरिटी भी हो जाती है, और उतना हमारा ये देखो इतनी बात समझ में है कि तत्व विचार से ही होता है, उसके लिए अन्य कोई पुरुषार्थ नहीं होता, पुरुषार्थ अपने आप में होता है और वो तत्व विचार से ही होता है, अन्य कोई पुरुषार्थ करना है कैसे बैठना है कैसे अंदर उपयोग ले जाना ऐसी बातें नहीं होती है। अब वो क्या होता है वो हम कल देखेंगे सुबह, क्योंकि यही प्रकरण इसमें भी आने वाला है, अभी हम यहीं रुकते हैं, अपना समय हो चुका है। हाँ बहुत अच्छा, आपने कहा है किसी को सादी मिथ्या दृष्टि जो जीव है उसकी क्या बात होती है, तो उसकी सत्ता में ये जो तीन प्रकृतियां हैं अब सादी मिथ्या दृष्टि में क्या होता है, थोड़े हम देखते हैं यहाँ पर कि सादी मिथ्या दृष्टि यानी उसका मिथ्यात्व तो बहुत बड़ा है और उसके जो अन्य प्रकृतियां हैं वो तो थोड़ी है, क्योंकि उसने क्या है अभी मिथ्यात्व में आने के बाद उसका नया मिथ्यात्व का बंध चल रहा है, नया मिथ्यात्व का उदय भी चल रहा है। यह मिथ्या दृष्टि हुआ है, एक बार सम्यक्त्व में से छूटकर मिथ्यात्व में आ गया है तो उसके यहां तो मिथ्यात्व का उदय हो रहा है और सत्ता में तो तीन प्रकृतियां हैं और मिथ्यात्व का बंध कर रहा है, नहीं उसके जो अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों की वो भी मिथ्यात्व का बंध भी कर रहा है, 70 कोड़ाकोड़ी या कोई अल्प क्या होता है। अभी इसके ये छूटते 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 उसकी इतनी ही रह गई तीन प्रकृतियों की सत्ता, अभी इतनी कम रहती है तब उसको जाकर दोबारा तीनों का ही उपशम एक साथ कर सकता है, इसके नीचे किसी पोजीशन पर उसको उपशम सम्यक तो हो ही नहीं सकता।
तो ये उदय में आते तो जिससे बांधते नहीं,
ये बंध चल रहा है मिथ्यात्व का, इनका बंध नहीं होता। यहां जो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है यहां पर है ना, और ये दो प्रकृति अंदर सत्ता में पड़ी हुई है, अब यहां पर होगा तो वेदक सम्यक तो हो सकता है किसी पोजीशन पर, सम्यक प्रकृति का उदय होगा और दो प्रकृतियां सत्ता में पड़ी रहेगी, इसको वो सर्वघाती और देशघाती का क्षय उपशम हम कहते हैं। परंतु यहां पर इतने पोजीशन पर इसको कहेंगे वेदक योग्य काल, होगा तो वेदक सम्यक्त्व ही होगा, इसके पहले दोबारा उपशम सम्यक्त्व नहीं हो सकता। अब इतनी बातें इतने उसकी अभी सत्ता रही है, एक सागर जितनी छोटी उसकी कर्मों की सत्ता है, तो दोबारा इन तीनों को और अनंतानुबंधी को एक साथ उपशमित करता है तो वहां कहा है सात प्रकृतियों को उपशम करके उपशम समय दृष्टि होता है। ये सादी मिथ्या दृष्टि दर्शन मुनि के तीन और अनंतानुबंधी के चार को उपशमित करके सादी मिथ्या दृष्टि है ना, वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, दोबारा उपशम हुआ। या कोई ऐसा जीव होगा इसको भी नष्ट कर दिया है उसने मिथ्यात्व अवस्था में, अभी उसके एकमात्र मिथ्यात्व प्रकृति रही है, इज एज गुड एज अनादि मिथ्या दृष्टि, उसकी सत्ता में मिथ्यात्व एक ही प्रकृति है, तो वो भी अभी सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तो उपशम सम्यक्त्व ही प्राप्त करेगा, तो उसको प्रथमोपशम ही कहेंगे। जब जब मिथ्यात्व में से उपशम सहित सम्यक्त्व होता है उस सबको प्रथमोपशम कहते हैं।
तो आदि मिथ्या दृष्टि के दूसरी दो प्रकृतियों के भी परमाणु ऐसे खींचते रहते
हैं, परंतु वो मिथ्यात्व रूप से होकर खींचते हैं उल्टा। अभी अपना समय हो गया है, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए दूसरे के समय पर, फिर प्रतिक्रमण करना पड़ेगा ना। बोलो 2400 भगवान की जय।